السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جي الحمد لله، إن شاء الله تعالى چلتے ہیں اپنے نیکس سیگمنٹ کی طرف. ہم ان اور جس میں ہم سیریز کر رہے ہیں، ہم نے کل دیکھا تھا یونس علیہ السلام کو. آپ کے ذہن میں کچھ ایک خاکہ بنا کہ کن حالات کو انہوں نے فیس کیا ہوگا، کس طرح سے وہ اینڈ اپ ہوئے سمندر میں. آج دیکھتے ہیں آگے. بے بسی کے اس عالم میں پیغمبر یونس پانیوں کے اندر ڈوبتے جا رہے تھے اور کہیں سنبھلنے کا نام نہیں لے رہے تھے کہ ایک دم اچانک ایک دیو ہیکل مچھلی نمودار ہوئی اور ایک ہی گھونٹ میں پانی کے ساتھ ساتھ یونس کو بھی اپنے اندر لے گئی. اندر خوب اندھیرا تھا، ایسا اندھیرا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا. مجھے لگا ابھی یہ مچھلی ان کو چبا لے گی، مگر وہ تو پانی میں غوطے کھاتے کھاتے مچھلی کے پیٹ تک پہنچ گئے. انہوں نے ایک چکنی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی. ان کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کا گوشت، قیمہ، ہڈیاں، چورا سب تیر رہا تھا، مگر خود ان کی ایک ہڈی بھی نہیں ٹوٹی تھی. وہ مشکل سے خود کو دیوار کے سہارے کے ساتھ اٹھا کے بٹھاتے ہیں اور اس جگہ پر سنبھل کے بیٹھنا ہی ایک بہت سخت مرحلہ تھا. یوں لگتا تھا جیسے بیلٹ کے بغیر کسی رولر کوسٹر پہ سوار کر دیا گیا ہو. مچھلی مسلسل اوپر نیچے تیرتی جا رہی تھی، جس سے اس کے اندر زلزلے کی جیسی کیفیت تھی. گھپ اندھیرا اور اس کے اندر زمین بھی قدموں تلے نہ ہو، یہ کیسا پریشانی کا عالم تھا. یہ وہ قید خانہ تھا جس کا کوئی ایگزٹ نہیں تھا، جس کی کسی کو خبر نہیں تھی، جس کے اندر کوئی روشن دان نہیں تھا، جس میں کوئی ساتھی قیدی بھی نہیں تھا. یہ ایسی کال کوٹھڑی تھی جہاں کوئی آواز سننے والا نہیں تھا. بہت دیر تک یہ ویل مچھلی تیزی سے تیرتی گئی اور پیغمبر دم سادے مچھلی کے پیٹ کی دیوار کے ساتھ لگے رہے. بہت دیر تیرنے کے بعد یوں لگا جیسے وہ کہیں جا کے ٹھہر گئی ہے، شاید یہ سمندر کی کوئی تہہ ہے. یہ آرام سے اس پہ ٹک گئی. میں نے سوچا اتنی نیچے سمندر کی تہہ میں یہاں سے نکلنا کیسے ممکن ہوگا؟ یہ تو ایسی جگہ ہے جہاں سے کوئی زندہ بچ کے نہیں جا سکتا. یہاں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، ماحول اتنا ڈراؤنا تھا کہ گھبراہٹ ہو رہی تھی. مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پھر سمندر کا اندھیرا اور اوپر رات کا اندھیرا. اس قدر اندھیری جگہ کا تصور بھی ممکن نہیں ہے دنیا میں. میری دنیا میں تو ہر طرف روشنیاں ہوتی ہیں، رات کے وقت بھی ایسا اجالا ہوتا ہے جیسے دن ہے، مگر یہ کیسی جگہ ہے؟ مگر پیغمبر کو دیکھیں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے ان کو کوئی پرواہ نہیں، ان کو अंधेरा परेशान नहीं कर रहा। मैं सख्त हैरत में थी। ठीक है माना, मदद आ जाएगी अल्लाह की, मगर कब आएगी? यहां तो बहुत घुटन है, कहीं कोई इम्कान तो नहीं लग रहा कि कोई जल्दी कुछ हो जाएगा। कहीं हालात सही होते नजर नहीं आ रहे। और मुझे तो इस मछली का भी कोई प्रोग्राम नहीं लगता कि ये कहीं बाहर निकलने देगी। ये वक्त कैसे कटेगा? और यहां से निकलें भी तो कहां जाएंगे? गहरे समुंदर की तह से खुश्की तक का सफर करना मुमकिन ही नहीं। और यहां रह के खाएंगे क्या, पिएंगे क्या? ये कैसी जेल है? किसी कैदी ने आज तक ऐसी जेल ना देखी होगी। ऊपर से मछली के मेदे के एसिड्स यूनुस अलैहिस्सलाम के आधे जिस्म को डबोए हुए थे। इर्द गिर्द मुर्दा मछलियों की बदबू ने सारे माहौल को खराब किया हुआ था। सांस यहां पे लेना मुश्किल था, ऑक्सीजन की कमी लग रही थी। मुझे तो बहुत घुटन हो रही थी। और लेकिन पैगंबर को देखें तो ऐसे लगता है इनको किसी और ही चीज की फिक्र है। यूं लग रहा है कि उनको अपने माहौल का कोई होश ही नहीं। यूं लगता है कि कोई भी चीज उनको बॉदर नहीं कर रही। उनको कैद खाने की इस कैद ने परेशान नहीं किया। यूं लगता है इनको अपने रब की नाराजगी का ज्यादा गम है, वो रब जिससे इनको सबसे ज्यादा मोहब्बत है, वो रब जो इनका खालिक है। उसकी तो जरा सी भी बेरुखी इनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इनकी आंखों में एक दर्द है, इनके आंसू बह रहे हैं। वो अपने माहौल से बेपरवाह सर झुकाए बैठे हैं। ना कोई भूख की शिकायत, ना कोई अकेलेपन का खौफ, ना कोई कैदे तन्हाई का दुख। और हो सकता है इस मछली का पेट ही उनकी कब्र बन जाए। इसका भी कोई डर नहीं, क्योंकि एक और दुख है जिसने तमाम दुखों को बेमानी कर दिया। मैंने देखा वो चुपके चुपके रो रहे हैं, मगर उनके रोने को कोई देख नहीं सकता। उनकी सिसकियां इस माहौल में गूंजने लगी, मगर कोई जानने वाला नहीं। एक वो रब है जो सुन सकता है और जो इनकी हालत को देख रहा है। मैंने सोचा क्या इनको उम्मीद होगी कि ये यहां से कभी निकल सकेंगे? क्या ये मायूस तो नहीं हो गए? मुझे तो अपनी जिंदगी में बहुत सारे वाकयात ऐसे याद हैं जब मेरे ऊपर कोई मुश्किल आती थी और मुझे लगता था कि हर तरफ से दरवाजे बंद हो गए, मैं बंद गली में आ गई हूं, मुझे निकलने का रास्ता नहीं मिलता था, तो मैं तो बहुत जल्दी मायूस हो जाती थी। चंद दिन दुआएं करती थी, मगर जैसे जैसे दिन गुजरते जाते थे उम्मीद की छोटी सी किरण भी मद्धम होती चली जाती थी। मगर इनकी उम्मीद नहीं टूटी, इनका ईमान कितना मजबूत है। कुछ देर में मुझे कहीं से कोई आवाज आने लगी, कोई तस्बीह कर रहा था। ये मछली के पेट के बाहर से आवाज आ रही थी, शायद कंकरियों की तस्बीह थी या दूसरी मछलियों की। कुछ देर बाद मैंने देखा पैगंबर यूनुस के होंठ हिल रहे हैं, आंसुओं की झड़ियां मुसलसल लगी हुई हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ कह रहे हैं। मैंने सुनने की कोशिश की, क्या पानी मांग रहे हैं? सांस नहीं आ रही, भूख लग रही है, डिप्रेशन हो रहा है, नहीं शायद यहां से निकलने की दुआ मांग रहे होंगे। ये अल्लाह यहां से निकाल दे, जाहिर है यहां कौन रह सकता है। मैंने कान करीब ले जाके तवज्जो से सुनने की कोशिश की, ला इलाहा इल्ला अंत सुभानक इन्नी कुंतु मिन ज़ालिमीन। मेरी आंखों में आंसू आ गए। आपकी हालत इतनी खराब हो रही है, आपका जिस्म गल रहा है, भूख से आपका पेट साथ लगा हुआ है, सांस यहां नहीं आ रही। तन्हाई यहां पर है, मगर आपकी जुबान पे क्या है? अल्लाह मैं ही जालिम हूं, मुसलसल यही कहते जा रहे हैं, ना तेरे सिवा कोई इलाह नहीं, तू पाक है, मैं जालिम हूं, मैं हैरत ज़दा थी। इनकी जगह कोई और होता तो कहता, ऐ अल्लाह ये मेरे साथ क्या हुआ? क्या मैंने इतना बड़ा कसूर कर दिया था कि ये सजा मुझे मिल रही है? या अल्लाह मैंने ऐसा क्या किया? या अल्लाह मुझे बता तो सही, मेरा गुनाह क्या है? या अल्लाह लोग तो इससे भी बड़े बड़े गुनाह करते हैं, उनको तो तूने नहीं पकड़ा, और मैंने ऐसा क्या कर दिया? लेकिन यहां पर तो ना कोई शिकवा, ना कोई गिला, ना कोई बदगुमानी, बस आंसू, आजजी, अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता उनकी सिसकियां जो सुनाई दे रही थी, वो बता रही थी कि इनमें कितना पछतावा है। उनकी खाल आहिस्ता आहिस्ता गल रही थी, मगर यूं लगता था जैसे इनको सिर्फ एक ही धुन सवार है। मेरा रब मुझसे नाराज हो गया, उनका सबसे बड़ा गम ही है, उनका सबसे बड़ा मसला ही है। वाकई जो अल्लाह ताला को पहचान जाए और उसके दिल में उसकी मोहब्बत हो, हर चीज की मोहब्बत से ज्यादा, उसके लिए कोई मसला बड़ा नहीं रह सकता। उसके लिए तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि मेरा रब मुझसे राजी भी है या नहीं। वाकई दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। पैगंबर यूनस हर चीज से बेपरवाह, बस यही तस्बीह किए जा रहे थे इस कैद खाने में। वक्त का कोई अंदाजा नहीं था, कोई हिसाब नहीं था, दिन है या रात, हफ्ते का कौन सा दिन है, कौन सा महीना है, बाहर दुनिया में क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं। पता नहीं कितने दिन गुजर गए, कितनी रातें गुजर गई, और इनकी जुबान रुकती ही नहीं, बस एक ही बात है, अल्लाह तू पाक है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मैं ही जालिम हूं। आपको अपने रब की जनाब में कमी करने की फिक्र है कि मुझसे ये कमी कैसे हो गई, ये कोताही कैसे हो गई। मैं तो समझ रही थी, कह रहे होंगे या अल्लाह मैं किधर फंस गया, या अल्लाह मैंने तो इतनी नेकियां की थी, उनका क्या हुआ। वो कह रहे हैं मैंने जुल्म किया और तू पा क्या। इस सारी दुआ में इन्होंने यहां से निकलने का जिक्र तक नहीं किया। अब मैं समझ गई, जिसको अल्लाह ताला बख्श दे फिर हर मुसीबत से निकलने का रास्ता उसके लिए वो खुद ही बना देता है। जिसकी बख्शिश हो गई फिर उस पर उसकी रहमतों के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। और जब मुझ पे कोई मुश्किल आती तो मैं हमेशा सोचा करती थी कि मैंने क्या गलत किया होगा। अव्वल तो हालात की शिकायत, शोर हंगामा वावेला करती, हाय मेरे साथ ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, मजलूमियत की तस्वीर बन जाती थी। और कभी सोच ही नहीं आती थी कि मैं अपने गुनाहों पर तो गौर करूं कि मैंने भी कुछ गलत किया है। कभी सोच नहीं आती थी कि मैंने अपने रब को नाराज किया है। जिसने मेरे काम संवारने हैं उसी हस्ती को नाराज कर दिया तो मेरे कामों को सुलझाएगा कौन, ये कभी सोचा ही नहीं। फिर ना जाने कितने दिन गुजर गए, ये तो नहीं पता, मगर हर लम्हा यहां पर बोझिल था। और वाकई मुश्किल वक्त पहाड़ की तरह लगता है। फिर एक वक्त ऐसा आया, अचानक कुछ हलचल महसूस हुई। ये मछली एकदम तेजी से उठी और वो जो सुकून से एक जगह पड़ी हुई थी अब बहुत तेज रफ्तारी के साथ एक रुख में तैर रही थी। पैगंबर यूनुस तो मछली के पेट में एक कोने के साथ बैठे हुए थे, शायद उनकी दुआ सुनी गई, शायद अब कैद खाने से रिहाई का वक्त आ चुका है, वरना अभी तक तो ये मछली बगैर किसी नकलो हरकत के बिल्कुल साकित पड़ी हुई थी। यूनुस की दुआ रहती दुनिया के हर दुखी के लिए, हर परेशान हाल के लिए, हर बेबस के लिए एक निजात का जरिया बनने वाली थी। यूं लगता है उनकी ये दुआ रंग ले आई, अल्लाह ताला ने इन पर रहम कर दिया, वरना कौन इस दियो हैकल मछली को यहां से हिला सकता था। मछली ने शायद मीलों का सफर किया होगा, फिर अचानक उसका बड़ा सा मुंह खुल गया, बाहर से रोशनी आने लगी। मैंने एक तरफ देखा, एक पानी का बड़ा रेला आया और पैगंबर यूनस को उठा के साथ ही बहाता हुआ ले गया। इस पानी का बहाव इस कदर तेज था कि यूनस अलैहिस्सलाम तो बहते चले गए, हत्ता कि मछली के मुंह के रास्ते से जमीन पर जाकर आ पड़े। मगर इनकी हालत इस कदर कमजोर थी, इतने नातवां थे कि उठ भी ना सकते थे। जहां पड़े थे वहीं पड़े रह गए, सारे जिस्म की जिल्द झड़ चुकी थी, गल चुकी थी और ऐसे हो गए थे जैसे अभी पैदा हुआ बच्चा। जहां गिरे वहीं गिरे रहे, अब इनको कौन देखेगा? मैंने सोचा अब इनको कौन खाना खिलाएगा, अब इनको कौन दवा लगाएगा। इनकी तो हालत ऐसी नहीं कि ये चल पड़ फिर सके, और यहां तो दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा। अगर हमारी नजर वाकई असबाब पर रहती है, लेकिन जब अल्लाह ताला किसी के लिए अपनी रहमतों के फैसले कर ले तो वो किसी सबब का मोहताज नहीं होता। बहुत सारी मक्खियां, मच्छर, कीड़े उनके जिस्म पर आकर बैठने लगे। उनको इतनी हिम्मत नहीं थी कि इनको उड़ा सके। या अल्लाह, इस वक्त इनके दिल की कैफियत क्या हो रही होगी? मैं सोच रही थी मछली के पेट से निजात मिली ही मिली, तो अब यहां पर पड़े हैं इतने मजबूर होके, और अल्लाह के पैगंबर हैं। कीड़े इनको संभलने नहीं दे रहे, मक्खियां हर तरफ से इन पर बैठ रही हैं। कौन अब इनको, इनसे निजात दिलाए? कौन अब इनको उठा के बिठाए? कौन अब इनके लिए कोई बंदोबस्त करे किसी शेल्टर का? मेरे देखते ही देखते जमीन फटी और एक बेल निकली, और वो बेल तेजी से ऊपर को चढ़ती चली गई, हत्ता कि एक बड़ा सा दरख्त बन गई। ऐसा घना दरख्त जिसकी छांव तले अब यूनुस अलैहिस्सलाम आ चुके थे। दरख्त ने अपना साया उन पर कर दिया था, और उसके पत्ते इतने मुलायम थे, उसके फल कद्दू थे, और इस दरख्त के आते ही मच्छर, मक्खियां, कीड़े सब दूर हो गए, भाग गए। यूनुस पैगंबर ने मुश्किल से अपना हाथ आगे बढ़ाया और इस बेल का एक फल तोड़ा और खाने लगे। कुछ ही देर में एक जंगली हिरनी कहीं से छलांगे मारती हुई इधर आ गई और इनके करीब आके रुक गई। उसके थन दूध से भरे हुए थे। यूनुस अलैहिस्सलाम को कद्दू के खाने से कुछ थोड़ी सी हिम्मत आई। आंखें खोल के हिरनी को देखा, हिरनी उनके बिल्कुल करीब आ चुकी थी। उन्होंने उसका दूध पीना शुरू किया, और मैं अल्लाह ताला के इस एहसान पर और उसकी इस रहमत पर हैरान हो रही थी। कैसे उसने कहाँ से निकाला और ये सब बंदोबस्त कर दिया, जबकि यहां पर कोई भी नहीं था, कोई बंदा बशर दूर दूर तक नहीं। मगर वो भला किसी सबब का कोई मोहताज है? उसको कोई सबब नहीं चाहिए, उसको किसी की जरूरत नहीं। हालात बदलने के लिए वही यूनस जब उठ के बैठ नहीं सकते थे, वही यूनस अब सेहत पकड़ने लग गए हैं। रोजाना सुबह भी ये हिरनी आ जाती है और शाम को भी। वाकई हर चीज तो अल्लाह ताला का लश्कर है। वो चाहे वेल मछली हो, चाहे हिरनी हो, चाहे कद्दू का ये दरख्त हो। जब वो रब चाहे तो सारी मशीनरी इंसान के हक में चलने लगती है, और जब वो ना चाहे तो अच्छे भले बहरी जहाज में ऐसा तूफान आ जाता है कि इंसान कहीं का भी नहीं रहता। जहाज पे होते हुए भी वो महफूज नहीं होता और पानी की नजर हो जाता है। वाकई जब अल्लाह ताला साथ है तो किसी की जरूरत नहीं, और वो साथ छोड़ दे तो इंसान ही उठाकर समंदर की नजर कर देते। दिन गुजरते जा रहे हैं और पैगंबर यूनुस की हिम्मत ताकत वापस आ रही है। जख्म भरने लगे हैं, सेहत सेहत बेहतर होने लगी है। अल्लाह ताला ने कैसे इनके दिन पलट दिए। शिफा भी मिल गई, खाना पीना भी मिल गया, जल्दी वो खड़े होने के काबिल होने लगे हैं। मैं कुर्बान जाऊं उस रब पर। कि जब वो थाम ले तो किसी और की जरूरत नहीं, और वो छोड़ दे तो कोई और काम नहीं आ सकता। वो बचाना चाहे तो कोई बाल भी का नहीं कर सकता, और वो पकड़ना चाहे तो कोई बचा नहीं सकता। जब वो नेमते वापस देता है तो ऐसे करिश्मे जाहिर होते हैं जहां तक इंसान की सोच भी नहीं जा सकती। यहां तक हमने यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ सफर किया, और मेरी और आपकी जिंदगी में कई ऐसे मरहले आए होंगे यकीनन, जिनमें हम भी किसी ऐसे ही मसले से गुजरे होंगे जिस मसले में कोई रोशनी नजर नहीं आती होगी, गुप्त अंधेरा होगा, मगर अल्लाह ताला निकालेगा और निकालता रहा है। बस उस पे भरोसा करना जरूरी है। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك